Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakti Shanta, Vasalmayi Matao, Isnemayi Veno, Aap Sarubandhu. To Taittiriya उपनिषद को माध्यम बना करके उपनिषद के प्रारंभ में जो किया गया मंगलाचरण उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। तो ऋषि मंगलाचरण करते हुए शांति पाठ रूप जो मंगलाचरण है उसको करता हुआ संकेत करता है, सन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमः, सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु रुक्रमः। यहां पर जो है सबसे पहले संकेत किया सन्नो मित्र। मित्र शब्द का अर्थ बतलाया, मित्र क्या है? जो मान्य करता है, सहायक है, उसका नाम ही है यहां मित्र शब्द। श्रेष्ठ है, ये सब शब्द बतलाए। उसी प्रकार से फिर आगे किया वरुण, अर्थात वर्ण करने अर्थ में धातु से वर्ण शब्द बना वरुण, अर्थात जो उत्तम है, श्रेष्ठतम है, ऐसे उसका वर्ण करना, ये सब संकेत किया। आगे संकेत किया भवत्व अर्यमा। अर्यमा शब्द से अर्थ बतलाया, अर्य माने होता है श्रेष्ठ, सुसंस्कृत, ज्ञान आदि आदि शब्द उसके बतलाए। तो वो क्या है? तो मां शब्द का अर्थ मापना, अर्थात हम जो कुछ भी मापते अपने मन के द्वारा ही संकल्पित होकर के मापते हैं। तो मां शब्द का अर्थ मन कहा। तो श्रेष्ठ मन या जो है अकुटिल मन, सरल मन, ये सब संकेत किया गया। ऐसा हमारा मन हो तो हमारे मन में ये सब जो है गुण प्रदान करने वाला जो देव है उससे प्रार्थना की गई। आगे संकेत किया कि इंद्र, सन्नो इंद्र। इंद्र क्या है? तो इंद्र शब्द को लेकर के बतलाया, ये बल का परिचायक, पराक्रम का परिचायक है, शौर्य का परिचायक है। ऐसे इंद्र को लेकर के यहां संकेत किया कि वो इंद्र हमारे में बल प्रदान करे। अब बल प्रदान करे तो बल क्या है, इसको लेकर के चर्चा की गई। कौन सा बल हम चाहते हैं? तो यहां पर ऋषि जो है, ऋषि का तात्पर्य ही होता है वेद शास्त्र तत्वा अवगंतारा इति ऋषया मुनया वा। ऋषि हम किसे कहते हैं? जो वेद शास्त्रों के तत्व का अवबोध करने में लगा हुआ है उसका नाम है ऋषि या मुनि। इसी को दूसरे शब्दों में भी संकेत कर दिया जाता है, मननम शीलम एशान ते मुनया ऋषया वा। मनन करना, चिंतन करना ही हो गया है स्वभाव जिसका, उसे क्या कहते हैं? ऋषि मुनि। दूसरे अर्थों में कह सकते हैं जो अनुसंधाता है, अन्वेषण करता है, उसको भी ऋषि शब्द से कहा। और आधुनिक भाषा के अंतर्गत उसी को वैज्ञानिक कहा। वैज्ञानिक लोग भी अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, वो भी अनुसंधाता है, और ऋषि भी यही कार्य ऋषियों का है, वो भी अन्वेषण करने वाले, खोजने वाले। फिर कहने लगे कि वही वैज्ञानिक और ऋषि, इनमें दोनों शब्दों में अंतर क्या है? जब दोनों ही खोज करने वाले हैं, अन्वेषण करने वाले हैं, अनुसंधाता हैं, तो फिर वैज्ञानिक और ऋषि में कोई फर्क है क्या, या दोनों एक ही? कहने लगे अन्वेषण खोज की दृष्टि से दोनों में साम्य है, एकता है। फर्क किसमें है? फर्क भी बतलाया। फर्क इसमें है, वैज्ञानिक कार्य को प्रधानता देते हुए अन्वेषण करते हैं, उनके यहां कार्य की प्रधानता है। ऋषियों के यहां खोज करते हैं लेकिन कारण को वो प्रधान मानते हैं। ये अंतर, एक कार्य को प्रधानता देते हुए अन्वेषण कर रहा है, एक कारण को जो है प्रधानता देते हुए अन्वेषण कर रहा है। तो ये ऋषि में अंतर है। तो ऋषि की लक्ष्यात्मक जो दृष्टि है वो किस पर है? कारण पर है। वैज्ञानिकों की जो लक्ष्यात्मक दृष्टि है वो किस पर है? कार्य पर है। इसलिए कार्यगत जो सिद्धांत होता है वो परिवर्तित होता रहता है और कारणगत जो सिद्धांत है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो ऋषि यहां लक्ष्य उनका क्या है? ऋषियों का जो ऋषि शांति पाठ कर रहा है, मंगलाचरण कर रहा है, उसका लक्ष्य है कारात्मक, जो अपरिवर्तनीय है। तो इस प्रकार से अपरिवर्तनीय को लक्ष्य बनाकर के जब खोज करेगा तो उससे जो उसे लाभ होगा वो कैसा होगा? अपरिवर्तनीय होगा। और जब हम कार्य को परिवर्तनशील को लक्ष्य बनाकर के खोज करेंगे, उससे जो हम खोज करके निकालेंगे उससे जो लाभ होगा वो भी कैसा होगा? परिवर्तनशील होगा। ये अंतर है। तो ऋषि यहां पर, ऋषि का लक्ष्य समझ लो कि क्या है? तो कारण है। और आप जानते हो कारण की ही सत्ता होती है, कार्य की सत्ता केवल प्रतीयमान होती है या मायिक होती है या व्यावहारिक होती है। कार्य की सत्ता सर्वथा रहती नहीं और कारण की सत्ता सर्वथा रहने वाली होती। यह अंतर है। तो इसलिए ऋषि का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? अपरिवर्तनी या निरतिशय जो सुख है वही उसका लक्ष्य। उसकी प्राप्ति करने के लिए ऋषि चाह रहा है कि उसकी प्राप्ति कब होगी, तो उसके साधन क्या हैं, और उन साधनों से जब हम संपन्न होंगे तभी हम उसे प्राप्त कर सकें। इसलिए उसके साधन क्या हैं उनका ही यहां संकेत किया। वो साधन क्या हैं? तो उसके लिए उन्होंने सहयोग मांगा, और जो है मने सहयोग मांगते हुए मन की सरलता आदि मांगी, और उसी के साथ में बल मांग रहे। तो वो कौन सा बल? जिनके द्वारा, जिन साधनों के द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। तो बल को लेकर के चर्चा कर रहे थे। तो जो श्रुति कहती है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, श्रुति ने भी कहा यह आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती। तो कहने ही लगे कौन सा बल? वैज्ञानिकों के पास भी बल है और हमारे जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास भी बल है, अन्य लोगों के पास भी बल है। क्या ये बल? क्या उस बल को प्राप्त करने के लिए हमें मल्लशाला में जाकर के मल्लई करनी पड़ेगी या शस्त्र अस्त्र इकट्ठे करने पड़ेंगे या इसी प्रकार से अन्य साधन इकट्ठे करने पड़ेंगे? कहा ये सब बल नहीं। तो कौन सा बल? तो उसकी चर्चा कर रहे थे बृहदारण्यक श्रुति के अंतर्गत, संकेत किया पांडित्यम निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासेत। क्या कहा? पांडित्यम निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासेत। तो पांडित्यम, तो पांडित्य क्या है? तो आप जानते हो, सुनते रहते हो, सत और असत का विवेचन करने वाली बुद्धि जिसको पंडा बुद्धि कहते, और वह पंडा बुद्धि जिसमें है उसे पंडित कहते, और ऐसे पंडितत्व धर्म से संपन्न जो है, जो भाव है, उसका नाम है पांडित्य। तो ऐसे पांडित्य भाव से युक्त जो, और जब ये पांडित्य आ जाएगा, ये भाव जिसमें आ जाएगा, सद असद का विवेक करना आ जाएगा, तो उसके अंतर्गत क्या होगा? तो जहां साधन चतुष्टय की बात की गई तो वहां क्या बतलाया? पहले विवेक और फिर वैराग्य। पांडित्य विवेक के बाद वैराग्य आता, इसलिए कहा पांडित्यम निर्विद्य। आगे निर्वेद शब्द की चर्चा करते, पांडित्य को प्राप्त करता हुआ वो वैराग्य को प्राप्त करता है, और ऐसे पांडित्य वैराग्य से संपन्न जो वही इस बल को प्राप्त करने वाला होता, वो बाल्यन तिष्ठासी, तो वो क्या है, बाल्य भाव में स्थित हो जाता है तिष्ठासी। और ऐसा जो बाल्य भाव में स्थित होता है वही उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होता। तो ऐसा बाल्यत्व, बाल्यत्व का मतलब अन्य जो है अवस्थाकृत बाल्यत्व नहीं, अवस्थाकृत जो बाल्यत्व है वो बाल्यत्व नहीं, वो बल नहीं, किंतु यहां पर क्या बाल्यत्व है, तो जहां पर विवेक वैराग्य से युक्तता होकर के जो उसी भाव में विद्यमान है उसी को यहां बाल्य भाव से संकेत किया गया। अब जब ये बाल्य भाव आएगा तो क्या होगा, सत असत का ज्ञान हुआ, तो नियम है जब हम जानते हैं कि ये पदार्थ सत है और ये असत है, तो किसी भी प्राणी की असत में फिर ईहा नहीं होती, वो सत पदार्थ को ही प्राप्त करना चाहता है, और सत पदार्थ की ईहा उसके अंतर्गत होती है और असत पदार्थ से ईहा समाप्त हो जाती, इसी का नाम वैराग्य, असत पदार्थ से उसे वैराग्य हो जाता है। और जब ये स्थिति हो जाती है तब जो इसके अंतर्गत बल आया वही वास्तव में बल है, और उसमें उसका स्थित होना यही बाल्य भाव में स्थित होना, ये संकेत किया जा रहा। तो बाल्यन तिष्ठा से ये जो संकेत किया इसको लेकर के ही हमने चर्चा की थी, जैसे सनत कुमार, सनत कुमार क्या है, तो वो हो इस स्थिति वाले, जिस स्थिति का यहां रूप बतलाया जा रहा उस स्थिति से संपन्न वो सनत कुमार, सनत शब्द का अर्थ होता है शाश्वत, अर्थात जो सर्वदा रहे हमेशा, और कुमार शब्द का अर्थ बतलाया था कुत्सित मारे अति कुमार, माने मार शब्द माने काम, मार शब्द का अर्थ क्या है, काम, तो जिसने कुत्सित कामनाओं का त्याग कर दिया, जिसके अंदर कुत्सित कामना है ही नहीं, कुत्सित कामना का मतलब है राग द्वेष पूर्विका जो कामना होती है उसका नाम होता है कुत्सित काम, और राग द्वेष से रहित जो कामना होती है उसे कहते हैं अकुत्सित काम। इसलिए गीता भगवान ने क्या कहा, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तृष्व, जो धर्म का विरोध न करने वाला, तो धर्म का विरोध क्या है, तो वहां सीधा संकेत है जहां कोई राग नहीं है कोई द्वेष नहीं, लेकिन केवल कर्तव्यता को लेकर के देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार क्रिया करने वाला, ठीक है, उसकी अपनी कोई ईहा नहीं, कोई राग नहीं, राग पूर्व का ईहा नहीं है या द्वेष पूर्व का ईहा नहीं है, ऐसा जो काम है, ऐसी जो कामना है, ऐसी जो इच्छा है उसका ही नाम क्या है, माने माने उसी को ही सनत कुमार करके कह दो या बाल्य की जो है इच्छा कर। तो इस प्रकार से संत कुमार के अंतर्गत चर्चा की गई, और भी इसको देखें गीता में भगवान ने बड़े ही सरस और सुंदर शब्दों में इन चीजों को बतलाया। इसलिए क्या कहा, मानव जीवन की सार्थकता कब है, तो इसके लिए भगवान ने संकेत किया कि वही ये बाल्यत्व हमारे अंदर आ जाए, और बाल्यत्व को लेकर के हम उस बाल्यवस्था का जो सुख है उसे प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन की सार्थकता। तो संकेत किया ये कब होगा, तो गीता में भगवान ने क्या कहा, भगवान ने संकेत किया, सक्नोत्येव यह सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। अब देख लो जो श्रुति कहती है उसी को स्मृति प्रतिपादित करती है, हमारे इतिहास पुराण भी उसी को प्रतिपादित करते हैं। अब संकेत किया, सक्नोति, समर्थ हो गया, सामर्थ्य वाला हो गया, शक्ति वाला हो गया। कौन सी सामर्थ्य आ गई, कौन सा बल आ गया, कौन सी शक्ति आ गई, तो क्या कहा, शक्नोति इह एव, एव शब्द भी जोड़ दिया, एव शब्द दृढ़ता का वाचक है। तो इह एव, इह शब्द का अर्थ किया अस्मिन लोके, इसी लोक में, इसी संसार में रहते हुए, अथवा अस्मिन शरीरे वा, इस शरीर में रहते हुए ही, इस देह में रहते हुए ही, शक्नोति माने जो समर्थ हो गया, सामर्थ्य वाला हो, शक्नोति हैव शोढुम, का क्या करने में समर्थ हो गया, का सहन करने में समर्थ हो गया, शोढुम माने सहन करने में। कहा अच्छा, तो शक्नोति हैव शोढुम कब, तो कहने लगे आचार्य शंकर ने लिख भी दिया, का भी क्यास की जरूरत है, वृद्धावस्था आ जाएगी तब सह लेंगे। भाई वहां तो आचार्य शंकर लिखते हैं कि नहीं नहीं, सामर्थ्य रहते रहते और उसको सामर्थ्य को प्राप्त कर ले, सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर ले, उसी की श्रेष्ठता। लेकिन वैसी गति कहा काम विकारा, सुस्के नीरे कहा का सारा, तो वो स्थिति आए तब कोई लाभ नहीं। इसलिए संकेत किया कि शरीर के रहते रहते, सामर्थ्य के रहते रहते, और फिर जो है हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाए, ये बल आ जाए। तो शक्नोति एव शोढुम प्राक शरीर विमोक्षा, शरीर के जीर्ण होने पर या शरीर के नष्ट होने पर के लिए बात नहीं कही, शरीर के रहते रहते, यह शब्द का प्रयोग कर दिया। एक यत्र एव कारा तत्र अन्यत्र नियम, जहां एव कार आ जाता है वो अन्य का व्यावर्तन करते हुए उसी वस्तु में बांध देता। कहीं क्रिया के साथ प्रयोग होता है एव का, कहीं कर्ता के साथ प्रयोग होता है, कहीं कर्म के साथ। जैसे आप सुनते हो अर्जुन एव धनुर्धरा, तो क्या किया, अन्य धनुषधारी हैं लेकिन वहां अर्जुन में बांध दिया, अर्जुन ही धनुषधारी, तो ये क्या है, कर्ता के साथ बांध दी है। पांडुरेव शंख, शंख जो है कैसा होता, का पीला ही होता, तो ये जो है उसके माने कर्म के साथ बांध दिया है। तो इस प्रकार से कहीं भवत्येव क्रिया के साथ जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से यहां पर भी संकेत कर दिया, माने कहा इस शरीर के रहते रहते ही। और जैसे आप कहते हो कि वही सभी लोग आ जाना, लेकिन आपको अवश्य ही आना पड़ेगा, है ना, तो निश्चयात्मक कर दिया। ऐसे ही यहां पर भी मन शरीर के रहते रहते, जो समर्थ हो जाए तो किस में समर्थ हो जाए, किसको सहन करने में, तो वहां भी यही संकेत किया। काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम का जो उद्वेग है, क्रोध का जो उद्वेग है, उनको सहन करने में जो समर्थ हो, कि आवेश आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आवेश आता है, आवेश की आंधी आती है तो क्या करती, आंधी वृक्षों को गिरा चली जाती, रुकती नहीं। वैसे ही यहां पर भी ये सदा रहने वाले भी नहीं है, आते हैं जाते हैं, लेकिन आते जाने में ही क्या करते, हमको धराशायी कर जाते, हमारा नुकसान कर जाते। इसलिए कहा ऐसे इन आवेशों को, उद्वेगों को जो शयन करने में समर्थ हो गए, ये है बल, ये सहन शक्ति। अब यही चीज वहां पर संकेत की सनत कुमार शब्द को लेकर के, सनत कुमार की भी वही स्थिति बतलाते हैं कि जो इस प्रकार से सदा जो है अपने में जो बाल्य भाव में स्थित रहने वाले हैं, ऐसे बल से युक्त हैं, तो उनका बल क्या है, संकेत किया। एक बार सनत कुमार जो थे हिमालय की उपत्यका में बैठे हुए थे, और हिमालय की उपत्यका में बैठे हुए थे और अपने इसी बल से युक्त होकर के शांत चित्त बैठे हुए, जब इसके अंतर्गत क्रोध नहीं, कामना नहीं, तो कोई हलचल भी नहीं हो, ऐसे अपने बाल्य भाव में स्थित, बाल्य निष्ठा से, उधर से भगवान शिव और पार्वती भ्रमण के लिए आ, जब वो उधर से आए तो भगवान शिव ने देखा वो अपनी मस्ती में बैठे हुए थे। भगवान शिव तो समझ गए कि भाई ये अपने बाल्य भाव में स्थित है, लेकिन पार्वती जी ने देखा तो पार्वती जी को लगा जगतः पितरौ बंदे पार्वती परमेश्वरौ। सारे जगत का आदि कारण तो हम लोग हैं, प्रकृति में तो मायाम विद्धि मायनम तु महेश्वरम है, तो सारे जगत का आदि कारण मैं हूं, हम लोग हैं, तो जगत के माता पिता हम हैं, और ये ठूंठ सा बैठा हुआ है, न इसने नमस्कार किया न इसने खड़े होकर स्वागत किया है, तो ये जो इस प्रकार से बैठा हुआ है ऐसा भाव उनके अंतर्गत आया। इसलिए पार्वती ने कहा तू जो है अविचारशील होते हुए और जो है एक ऊंट की तरह से जड़ व्यक्ति पशु की तरह से बैठा हुआ है गर्दन ऊपर किए हुए, इसलिए जा तू ऊंट हो जा। संत कुमार को यह श्राप दे दिया, पार्वती ने श्राप दे दिया और आगे बढ़ गए। सनत कुमार को ऊंट के शरीर की प्राप्ति हो गई, सनत कुमार को ऊंट के शरीर की प्राप्ति हो गई, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? तो गीता का दूसरा अर्थ आपने पढ़ा होगा, भगवान ने क्या कहा, यह बलवी कब आता है? तो एक और श्लोक बच रहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। क्या संकेत किया? आप जो है भोजन छोड़ दोगे, आंख बंद कर लोगे देखना छोड़ दोगे, कान बंद कर लोगे सुनना छोड़ दोगे, लेकिन इतना छोड़ देने मात्र से आप जो है विषयों से है या हलचल से रहित नहीं हो सकते। कहा क्यों? तो इसके लिए गीता में बहुत प्रकाश से तृतीय अध्याय में भी संकेत किया, तो वो कहा रसवर्जम, हमने ऊपर से तो सुनना छोड़ दिया, कान बंद कर लिए, आंख बंद कर ली, भोजन का त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसका रस बैठा हुआ है, उसकी कामना इहा बैठी, तो वो हमको जो है प्रताड़ित करेगी। एक दृष्टांत सुना दें आपको, दृष्टांत क्या घटित घटना सुना दें। सन्नासी के आसपास की बात है, उस समय हम लोग हरिद्वार में थे, आयु भी छोटी थी, एक बड़े अच्छे संत थे उनके साथ, उज्जैन का शायद कुंभ था, 80 या 89 की बात है, तो उनके साथ हम लोग हरिद्वार से चले, तो वो संत जो थे मौन धारण किए हुए थे, मौनी मौनी उनको कहते भी थे, और 50-55 की आयु भी उनकी थी, हम लोगों की उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हुई, अच्छे संत हैं, शांत प्रिय हैं, तो रास्ते में उनकी सेवा करते हुए खान पान सब पूछते हुए उनके साथ गए, उज्जैन पहुंचे, उज्जैन पहुंच करके वहां मंडलियां चलती, तो हम लोग जहां पर जिस कैंप में रुके थे वहां भी मंडली आई, उस मंडली में वो स्वामी जी भी थे, और जो नारियल वाली चिप्पी कमंडल उनके हाथ में था, एक संत से उनका जो है किसी प्रकार से विवाद हो गया, तो पहले तो वो इशारे से चेष्टाओं से उनसे चर्चा करते रहे, लेकिन फिर वो इतनी बात बढ़ गई कि उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो जो हाथ में चिप्पी थी वही उन्होंने उसके सिर में मार दी, उसके सिर से खून निकल पड़ा। अब हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मौन, तो याद आया भगवत पादाचार्य शंकर कहा वह वचन, क्या गिरा मौनम तू बालानाम, वाणी का मौन तो ये बालकों का काम है, माने अज्ञानियों का काम, वास्तव में मौन क्या होना चाहिए, तो ये संकेत करता, हम ऊपर से जो है वाणी नहीं बोलते हैं, शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलने की चेष्टा बैठी हुई तो हम लिखेंगे स्लेट चाहिए अमुक चाहिए या संकेत करेंगे, तो ये सारी क्रिया, इसलिए संकेत कर दिया गया कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन, जब तक वहां जो रस बैठा हुआ है, यह बैठी हुई है, कामना बैठी हुई है, उसकी निवृत्ति नहीं होगी तब तक बात बनने वाली। वैसी को राग द्वेष वियुक्त इस्तु विषयान इंद्रिय सन, ये भगवान ने संकेत किया। तो अब जो है ये रस कब जाएगा, इस रस की निवृत्ति कब होगी? तो रस की निवृत्ति कहा जो परम है, जब तक उसकी दृष्टि नहीं बनती है तब तक ये रस जाता। परम को जब तक हम अपना लक्ष्य नहीं बना पाते हैं, उसमें हमारी दृष्टि नहीं होती है, तब तक रस नहीं जाता, तब तक अपरम जो है उनमें रस बना रहता है। जी संकेत किया। तो यहां संत कुमार के जीवन में क्या था, वो बाहर से नहीं, उनके अंदर रस चला गया था। और जिसके अंतर्गत से रस चला जाता उसकी स्थिति क्या होती, तो इसको यदि समझना चाहे तो अष्टावक्र ने जनक को समझाते हुए इस बात को कहा। अष्टावक्र ने कहा, निर्वासनो निरालंब स्वच्छंद मुक्त बंधना।